एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मन प्रति जो विचार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आईया ने वो थोड़े समक्ष भेट करा। मन अंतर बोले सब कोए, मन मारे बिन भगत ना होए। शरीर दी असी जिंदगी लोड़दे हाँ, जीवन चाहिदा है, क्योंकि जीवन स्वयं एक रस है और जीवन विच आशावादी होना बड़ा लाजमी है। पर शरीर दी जिंदगी खड़ी है श्वासां दी गति ते, श्वास चलते रहन शरीर जिंदा है। मन दी जिंदगी खड़ी है फुरनिया ते, फुरने चलते रहन मन जिंदा है, श्वास चलते रहन शरीर जिंदा है। श्वासों के रुक जाण नाल शरीर का अंत है, फुरनिया के रुक जाण नाल मन का अंत है। शरीर के तल ते असी आत्महत्या भी कर सकते हैं, लोग खुदकशी भी कर लेंगे, अपने श्वासों की डोरी नू रोक लेंगे। कोई मादक वस्तु लैके बंदा बेहोश भी हो जाता है। प्राणायाम करके श्वासों की गति नू कई मध्यम भी कर लेंगे। योग दियां ऐसियां प्रक्रियावां ने जिहदे नाल श्वासों की गति मध्यम की जा सकती है, और ऐसी भी साधना है जिहदे नाल श्वास रोके जा सकते हैं। जे श्वास रुक जान तां फिर मनुख की हालत उस मुरदे की तरह हो जाती है जिहदे श्वासों की डोरी टुट गई है। तो श्वासों नू रोक लेना और श्वासों की गति का छीण हो जाना इतने अक्सर होंदा ही रहिंदा है। पर फुरनिया नू कोई रोक लवे ते फुरनिया दे रुकण दे नाल मन का अंत हो जाए, ऐसा कदी कदाई पृथ्वी ते होंदा है। असी रोज मुरदे उठते देखते हाँ जिन्हां दे चलदे हुए श्वास रुक गए, और इस तरह के मुरदे असी मरगड़ घाट विच देख सकते हाँ, कब्रिस्तान विच देख सकते हाँ, जिन्हां दे चलदे हुए श्वास रुक गए। पर जिन्हां दे चलदे फुरने रुक गए होन ते मन की मौत हो गई होवे, ऐसे जीवन मुक्त पुरशां दे दर्शन नहीं आते। जो अंदरों मर गया है बाहरों जिंदा है उन्हें जीवन मुक्त कहिंदे ने। जो बाहरों जिंदा है और जिहदे कोल अंदर दी मन दी जिंदगी भी प्रगाढ़ रूप विच प्रबल रूप विच मौजूद है, ऐसे मनुख ते असी कह सकते हैं बाहरों बिल्कुल मुरदा है, मुरदे की तरह जी रहे, मुरदे दे जैसे बदबू खड़ी हो जाती है इस तरह मनुख दे अंदर बदबू खड़ी हो जाती है। तो धर्म की सारी साधना खड़ी है मन नू मारन ते, संसार की सारी भज दौड़ खड़ी है शरीर नू जिंदा रखण ते। धन इस वास्ते कमाना है, रोजी इस वास्ते कमानी है शरीर जिंदा रहे, पर गुरुद्वारे मंदिर इस वास्ते जाना है, भगती इस वास्ते करनी है मन की मौत हो जाए। एक दा जीवन लोड़ना है, एक दी मौत लोड़नी है, एक दी जिंदगी लभनी है, एक दी मौत लभनी है। मन नू किवें मारिया जाए, वक् वक् साधना संसार विच प्रचलित होईयां। एक साधना गुरु घर विच भी है, शब्द विच सुरत जोड़नी, शब्द विच ध्यान जोड़ना, शब्द दी गुंजार पा के वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलाप के उहदे विच ध्यान जोड़न नाल सहजे सहजे फुरनिया की गति मध्यम आती है। इस तरह जिस तरह कोई प्राणायाम करे तो श्वासों की गति नू मध्यम कर लैंदा है। लगातार ध्यान की साधना करन नाल ध्यान शब्द विच जुड़ जाता है और मन मर जाता है, मन रुक जाता है। जिस तरह योगी दे श्वास रुक जाते हैं, समाधि दे चला जाता है, भगत वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करद्या करद्या उहदे विच ध्यान लीन हो जाता है तो उहदा मन मर जाता है। जिस दिन मन की मौत हो गई आवने जावने मुक जाते हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं रहा, अगला कोई प्लान ही नहीं है, तो अगली जिंदगी की बनतर किस तरह होवे, हो ही नहीं सकती। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। मन का कागज ही फट गया, लेखा ही मुक गया, अगला जन्म कित्थे, अगला जीवन कित्थे। भगत कबीर के संबंध में श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। जन्मा जन्मांतरां दे जो संस्कारां दे कागज सन कबीर ने फाड़ के सुआह कर दिते, अगला कोई जन्म नहीं होगा। तो धर्म की साधना खड़ी है फुरनिया नूं रोकण दे। जिस दिन फुरने रुक जाते ने मन मर जाता है, ते मन दे मरदिया ही बुद्धि तीक्षण हो जाती है, अत्यंत तीक्षण। जिस मनुख की बुद्धि तीक्षण हो गई, बौद्धिक बल उन्नत हो गया, ऐसा मनुख अपनी जिंदगी विच कदी गलत फैसले नहीं करेगा। उसके फैसले नूं संशोधन की लोड़ नहीं, तरमीम करने की लोड़ नहीं। उसने जो कुछ भी कह दिता सही है, अमर है, अटल है। आम राजनीतिक लोगों के बनाए हुए विधान बदलने पैंदे, उन्होंने तरमीम करनी पैंदी है। पर भगतों ने जो हजारां साल पहले कहा है वह अमर गीत है, अमर बचन ने, अटल गीत ने। उन्होंने संशोधन करने की लोड़ नहीं, उन्होंने तरमीम करने की लोड़ नहीं। उस तीक्षण बुद्धि तो निकले ने जो सही ने, ते सच ने जो कभी गलत नहीं होंगे। और जिस दिन मन मर जाता है, उस दिन चित की दशा यह हो जाती है कि मनुख अठे पैर प्रभु चिंतन विच रहिंदा है, प्रभु की याद विच रहिंदा है, अकाल पुरख की याद विच रहिंदा है। चित अठे पैर उसनू ही याद करता रहिंदा है। ते चित दा ना ही चित्र गुपत है, ओ चित्र जो गुपत है। मैं शरीर करके कुछ कर रहा हूं, यह दिखाई देता है, पर मेरे चित दे च की चल रहा है यह नहीं दिखाई देता, यह गुप्त है। तो मनुख का यह चित गुप्त है, उदे च की चल रहा है, किस दी याद चल रही है, किस दी स्मृति चल रही है, दूसरे नु बोध नहीं आता। कोल बैठा है बच्चा, प्यो नू नहीं पता कि बच्चे दे चित दे च की चल रहा है, बच्चे नू नहीं पता बापू दे चित दे च की चल रहा है, पति नू नहीं पता पत्नी दे अंदर की चल रहा है, और पत्नी नू नहीं पता कि पति के अंदर की चल रहा है। कादर करीम ने यह सिलसिला गुप्त रखे। बाहर की क्रिया दिखाई दे जाती है, अंदर की क्रिया का नहीं पता चलता, चित की दशा का नहीं पता चलता। इस वास्ते भारत के ऋषि मुनिया ने इसका नाम बड़ा सुंदर रखे है, चित्र गुप्त। चित्र गुप्त दरअसल जो कुछ असी वेखते हाँ, सुनते हाँ, बोलते हाँ, याद में रेंदे हाँ, जिसते अंदर संस्कार बनते जाते, उसते चित्र बनता जा रहा है। अंतम समय जब इस प्रगट चित्र नूं दफन कर देंदे या नजरे आतिश कर देंदे, साड़ देंदे, तां गुप्त चित्र ही अगे जांदा है। और गुप्त चित्र जैसा होवे वैसा ही मनुख नूं जन्म मिलता है। ये चित्र गुप्त भैड़ा है तो जन्म भैड़ा होवेगा, और ये चित्र गुप्त सुंदर है तो फिर कोई अच्छा जन्म मिलेगा, सुंदर जन्म मिलेगा। और धर्म का फल सड़े वेश के पंडिता ने लिखे है, शुभ कुल जन्म सरूप तन भूप भोग आपत, पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। जिस बंदे ने पिछले जन्म दे च धर्म कमाया है, साधना कीती है, चित्र गुप्त बड़ा सुंदर बनाया है, अंदर का चित्र उसका महान होया है, लेकिन चित्र बनिया रहा है भावे सुंदर है, तो फिर अगला जन्म होवेगा। उस चित्र ने प्रगट चित्र नूं जन्म देना है, तो उसका प्रगट चित्र अगला जिहड़ा बनेगा वह इस तरह का होगा, शुभ कुल जन्म किसी चंगी कुल दे च उसका जन्म होगा। सरूप तन वो तन करके भी बड़ा सुंदर होगा, सुंदरता भी परमात्मा की देन है। जिस तरह धन संपदा धियां पुत्र पूर्वला संजोग है, तन की सुंदरता भी प्रभु की एक बख्शिश है, उसकी एक देन है। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनुरूप, उदी बख्शिश है, उदी रहमत है। शुभ कुल जन्म सरूप तन भूप भोग आपत, हर वक्त रजिया रहना ते राजियां वाली शान शौकत प्राप्त होवे, ये भी धर्म का फल है। विपता तो रहत होना, कोई विपता ना आवे, ये भी धर्म का फल है। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत, विद्वान होना आलम होना यह भी पूर्वले धर्म का फल है। और देही का अरोग होना, कंचन वर्गा होना, रोगों तो रहत होना यह भी पूर्वले कर्मां का फल है। धर्म जान फल सत, ये सत प्रबल जड़े फल ने यह पूर्वले धर्म अनुसार कमाए हुए धर्म अनुसार प्राप्त होंगे। तो चित्र गुप्त सुंदर होवे तो किसी शुभ कुल दे जन्म हो जाएगा, धन की प्राप्ति होवेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तंदुरुस्ती की प्राप्ति होगी और विपता तो मनुख रहत होगा, लेकिन जन्म होगा। एक साधना ऐसी है जिदे नाल चित्र गुप्त खो जाता है, मिट जाता है, परम समाधि दे चलीन होंदे आ मनुख नूं फिर कुछ याद नहीं करना पैंदा। याद इस तरह अपने आप अंदरों चलती है जिस तरह श्वास चलते हैं, तो श्वास मैं नहीं चला रहा, अपने आप चल रहे हैं। अगर कोई आखे कि यह श्वास मैं चला रहा, तो जब बंदा सो जाता है कौन चला है, तो अपने आप चलते हैं। इस तरह प्रभु चिंतन अपने आप जिस दिन चलन लग पैंदा है, उस दिन चित्रगुप्त का अंत हो जाता है, उस दिन चित्रगुप्त मिट जाता है। तो जब चित्रगुप्त का अंत हो गया तो फिर अगले जन्म का भी अंत हो गया, अगला प्रोग्राम खत्म, हुण अगली कोई रूपरेखा नहीं बचेगी, अगला कोई जन्म नहीं होवेगा। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा, चित्रगुप्त का कागज फट गया। तो जब गुप्त चित्र का ही कागज फट गया तो चित्रगुप्त नहीं तो प्रगट चित्र बनना सी। प्रगट चित्र का जन्म का बीज है चित्रगुप्त, अंदर का चित्र जो अंदर दे संस्कार ने, बीज ही खत्म हो गया तो जन्म कितों, संस्कार ही मिट गए तो संसार विच आवना कित्थे। अंते करन दी चौथी दशा है अहं, मैं हां ते मैं होवां। जिस दिन मन मरदा है, मन दे फुरने मरदे न, बुद्धि तीक्षण होंदी है, निर्मल होंदी है, स्वच्छ होंदी है, वो शुभ ते सही फैसले करदी है, ते चित दी दशा ए हो जांदी है कि अठे पैर प्रभु चिंतन अपने आप चलदा है। उसे दिन अहं भाव मनुख दा निर्मल हो जांदा है, शुद्ध हो जांदा है, स्वयमानता अंदर पैदा हो जाती है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक परम सुंदर वाक है भगतां दे संबंध विच। उदे च मेरे पातशाह धन्ने नूं अगे कर दें, ते धन्ने का संबंध किसान घराने नालों सी, जट घराने नालों सी। ई बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिले पर तख गुसाइयां धन्ना वडभागा। ऐ गल जद धन्ने ने सुनी, उस जट ने सुनी, रोस दे च आया, प्यार दे च आया, हौसला उसका वध्या, उहदे अंदर वीर रस पैदा होया। किहड़ी गल उसने सुनी? उन्हें यह सुनिया कि गोबिंद 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 स्यों, नाम देव मन लीना, आड दाम को छी परो ओयो लाखीना। कौड़ियां दा छीमा छीबा अछूत जात दा ए नाम देव जी, ये भगत बन सकता है, ये लखां दा बन सकता है, ये ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो मैं ते जट हाँ, मैं क्यों नहीं बनागा। जटपणे दा मान अगे आ गया, जटपणे दा हंकार अगे आ गया, पर हंकार दी दशा बड़ी निर्मल है, मार्ग बड़ा निर्मल है, चाल बड़ी निर्मल है। यह हंकार परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, यह हंकार भगत बनना चाहता है, यह हंकार दानी बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। तो नामदेव एक अछूत है, जट यह प्रेरणा लेंदा है, एक अछूत ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो मैं जट होके किस तरह नहीं बन सकता। यह बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा, यह गल जब उस जट ने सुनी भगती कर लग पाया। इसने होर की सुनिया? इसने यह भी सुनिया कि बुनना तनना त्याग के, हर प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जला हेरो भयो गुणी गहीरा। उन्हें यह भी सुनिया कि नीच कुल दे जन्म लैण वाला जुलाहा गुणी गहीर बन गया, महापंडित बन गया, विद्वान बन गया, दिल नूं प्रेरणा मिली, हौसला वधिया। जे जुलाहा भगत बन सकता है, गुणी गहीर बन सकता है, तो जट क्यों नहीं बन सकता? जट भी अगां चल सकता है। होर हौसला मिलिया इस जट नूं रविदास तो, रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग, हरि दर्शन पाया। ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, ए गल जद उसने सुनी कि चमार भगत बन गया, जुलाहा भगत बन गया, छीबा भगत बन गया, और उदों ते हौसला बहुत ही बुलंद होया। जद इस जट ने यह सुनिया, सैन नाई बुतकारिया, ओ घट घर 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 सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता में गिणिया। ओ नाई जो घर घर दे बड़ी नीवी सेवा करता है, ओदा शुमार भी भगतां च होण लग पिया। जब वह भगत बन सकता है तो मैं क्यों नहीं भगत बन सकता। है तो यह हंकार पर बड़ा शुद्ध हंकार है, शुद्ध होमे, और इस शुद्ध होमे ने तपस्या करन ते मजबूर कीता, भगती करन ते मजबूर कीता, और ऐसा रंग चढ़िया भगती दा कि धन्ना भी भगतां दी कतार विच खड़ा हो गया। ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले परतख गुसैया धन्ना वड़ भागा। शुद्ध हंकार ने भगती दे मार्ग ते तोरिया और भगती ने बिल्कुल शुद्ध कर दिता, बिल्कुल पवित्र कर दिता, बिल्कुल निर्मल कर दिता। हंकार संसारियां दे अंदर होंदा है, स्वयमान भगतां दे अंदर होंदा है, अहं बुद्ध निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इस वास्ते अहं भाव जब स्वयमान बनता है तो यह भगत जालम नाल जरूर टकराणगे। असी देखते हां बाबर दे अगों सारा देश झुकया, लेकिन बाबर नूं मजबूरन गुरु नानक दे अगों झुकना पिया क्योंकि गुरु नानक नहीं झुकते सन। इसे तरीके दे नाल असी देखते हां कि सिकंदर लोधी जिसने समुचे हिंदुस्तान नूं झुकाने की कोशिश की और हिंदुस्तान के उलमा उमरा झुके, नामदेव नहीं झुकते सन। जब दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने नामदेव नूं कहा ये मोई होई गऊ जुआ दे, तेरे पिछे लखां लोग चलते हैं, लखां लोग तैनूं मनते ने, तैनूं पूजते ने, मैं वेखना चाहना तेरे च कोई शक्ति है, तेरे च कोई करामात है, ये मोई होई गऊ तू जुआ। तो नामदेव कहन लगे हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सो, जन्म ते मरण मेरे हाथ देच नहीं, ए प्रभु दे हाथ देच है, ए अकाल पुरख दे हाथ देच है, और ए हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है। जन्म ते मरण दे उते साडा जोर नहीं, साडी कोई पहुंच नहीं। जद असी मकान बनाना होवे ते मकान तो नहीं पुछदे तू बनना भी चाहना है कि नहीं, और जे मकान असी ढाणा होवे तो असी मकान तो नहीं पुछते तू ढहना भी चाहना है कि नहीं, रब साथों नहीं पुछता तू जमना भी चाहना है कि नहीं, और तू मरना भी चाहना है कि नहीं। जन्म ते मरण साढ़े हथ देच नहीं, ये उस अकाल पुरख के हथ देच है। जोर न जीवन मरण न जोर, जद ये व्याख्या नामदेव ने रखी कि हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए, बादशाह चढ़ियो हंकार, यह हकीकत है, गुस्से च आया। बादशाह होवे ते हंकारी ना होवे लाजमी कुछ ना कुछ फिर गल होवेगी। बादशाह लाजमी हंकारी होंदे ने, राजनीतिक लाजमी हंकारी हो जाता है, और हंकारी मनुख का ही राजनीति विच बड़ा भारी शौक आता है, वह दूजियां नूं गुलाम बना के खुश रहिंदे ने, आनंदित होंदे ने। आखण लगा नामदेव फिर सवेरे सूरज चढ़न तो पहले मैं तेरी गर्दन उड़ा देनी जे तू गऊ नहीं जवानी। साफ इनकारी हो गए नामदेव, यह मेरे वस तो परे दी गल है, यह राम दे हत्थां दे च है। दिल्ली दे पतवंते बंदे आखिर सुल्तान दे कोल पहुंचे और कहन लगे बादशाह बड़ा कीमती मनुख है, हिंदुस्तान दे कीमती मनुखां दे चों एक खास मनुख है, महान मनुख है, इस दे उते इतना जुल्म नहीं चाहिए। असी नामदेव दे शरीर दे वजन दा थानू सोना ते चांदी दे देंदे हैं, ये कीमती मनुख तुसी छड़ दो, इस कीमती मनुख नू रिहा कर दो। बादशाह कहन लगा ऐसा नहीं हो सकता, माल लाओ ता दोजक पर, धन लेके मैं इस मनुख नू नहीं छड़ना, किसे कीमत ते नहीं छड़ना, मेरा ईमान मैनू इजाजत नहीं देंदा। तो दिल्ली दे पतवंते बादशाह नूं कहन लगे बई मोई होई गऊ नामदेव नहीं जवाउंदा, ते धन लेके नामदेव नूं छड्डण नूं तुसी तैयार नहीं, इस वास्ते बादशाह कोई तीसरा मार्ग कढ़ो, कोई तीसरा रस्ता कढ़ो। तां तीसरा रस्ता सुल्तान ये कहन लगा बई नामदेव राम राम कहना छड़ देवे, अल्लाह अल्लाह आखे मैं छड़ देंगा, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। तो दिल्ली दे पतवंते कह लगे नामदेव तू अल्लाह कह जान छड़ा, फिर कहिंदा रही राम राम, पर स्वयमान भगत दा गरजया अंदर दी अणख बाहर आई, कह लगे नहीं एक जालम दे अगों झुक जाना जुलम ते जालम दी मदद करनी है, اور یہ سوئم ایک ظلم ہوے گا ظالم دے اگوں جھکنا۔ میں نہیں جھکنا، میں اللہ نہیں کہنا۔ بھگت نام دیو دی ماتا بھی پریرنا دین لگی، پتر کہہ دے کی فرق پیندا ہے، آخر ایک نے تو نام دیو کہنے ہیں تے ایک، پر بادشاہ دے کہنے تے نہیں کہنا۔ میں نام دیو دی ماتا کہن لگی، کئی دفعہ میں دیکھے ہے اے میرے بچے، تیری رسنا تو اللہ بھی نکلتا ہے، خدا بھی نکلتا ہے۔ نام دیو دا ایک بڑا قیمتی شبد ہے، کریما رحیما اللہ تو غنی، حاضرہ حضور درپیش تو منی، دریاؤ تو دہند تو بسیار تو دھنی، دے لے ایک تو دگر کو نہیں، تو دانا تو بینا میں بچار کیا کری، نامے چے سوامی بخشند تو ہری۔ تو تھے کریم بھی آکھی جا رہے نے، اللہ بھی آکھی جا رہے نے، رحیم بھی آکھی جا رہے نے۔ ماں کہندی ہے میں اکثر تینوں دیکھا ہے اللہ اللہ دی رٹن کر دیا بھی، تے اج آکھن دے کی حرج ہے؟ نام دیو کہنا اتھے جد میں کہنا اپنی موج دے کہنا، اپنی مستی دے کہنا، تے ہن جڑا میں آکھاں گا اے بادشاہ دے جبر ہیٹ آکھاں گا، میں جبر نہیں قبولنا، میں دبا ہیٹ آ کے اللہ نہیں کہنا۔ اسی دیکھ دیاں 9 سال دے گرو نانک نے جنیو پہنن تو انکار کیتا ہے، 9 سال دے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جنیو دی خاطر اپنے پتا نو قربان کرنا چاہندے نے۔ یہ دو ویروھی گلاں اتہاس وچ ملدیاں نے۔ دراصل کیوں، برہمن جبرن جنیو پہنانا چاہندا ہے اور اورنگزیب جبرن جنیو اتارنا چاہندا ہے۔ گرو نانک نے کہہ دیتا میں جبرن پہننا نہیں، تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کہہ دیتا میں جبرن اتارن نہیں دینا، جبر نہیں برداشت کیتا جائے گا، جبر نہیں سہن کیتا جائے گا، کیونکہ بھگتاں دے اندر سوئمان ہوندا ہے، انک ہوندی ہے، خودداری ہوندی ہے، خودداری دے آسرے تے وہ ٹکر لیندے نے، وہ ٹکراندے نے ظلم نال تے ظالم نال۔ تو جس وقت نام دیو دی ماتا کہندی ہے بے کہے پتر نہیں، میں وہ مستی چ کہنا ہونا، اج اے جبر ہیٹھ آ کے میں ایسا نہیں کہنا۔ تو مان تے اے ہے پر اے سوئمان ہے، اے انک ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال سمیج کہندے نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر آواز سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا نو پوچھنا پے دستے صحیح تینو کی چاہیے۔ ایک اردو دے عالم دا کہنا ہے خوددار ہوں کیوں چل کے آیا دل اہل کرم تک، کھیتی کبھی خود چل کے گھٹا تک نہیں جاتی۔ خوددار ہوں میں، انکھیلا میں تیرے کول نہیں آ سکدا، جنہاں بدلاں نے برسنا ہوندا ہے انہاں دے کول کھیتیاں نہیں جاندیاں، بدل آپ ہی چلے جاندے ہیں۔ خوددار ہوں کیوں چل کے آؤں در اہل کرم تک، کھیتی کبھی خود چل کے گھٹا تک نہیں جاتی۔ بھگت اتنا سوئمان وچ بھر جاندا ہے کہ پرماتما دے اگوں بھی کوئی منگ نہیں رکھدا، اور اتھے انہوں پرتیت ہو جاندا ہے منگ دی پریت بھی کوئی پریت ہے، مانگت مان نہ پایا، سنسار کولوں بھی نہیں منگنا، کرتار کولو بھی نہیں منگنا، اتھے بھی خاموش ہو گیا۔ اتھے بھی جب کرتار کہہ دے وے کی چاہیے ہے تو وہ کہہ دے جو تیری رضا، جو تیری مرضی۔ میں ایک گاتھا پڑھی ہے، ابھیاس کردیاں کردیاں کسی دی صورت لگ گئی، سمادھی چلا گئے، دیوتے پرگٹ ہوئے، آکھن لگے سنت کچھ منگ لے، تینوں کی چاہیے ہے کچھ منگ لے۔ اے فقیر کہن لگا جد میرا من منگا دے نال پریا ہویا سی، کدی تسی پرگٹ نہیں ہوئے، میں روز منگدا منگدا تھک گیا، پر ہن جد میں سادھنا کر کر کے اپنی ساریاں ہی منگا نو ختم کر دیتا ہے، اندر کوئی منگ نہیں، تا اج تسی پرگٹ ہوئے ہو اور کہندے ہو کچھ منگ لو، تو میں کی منگا، اندر کوئی منگ ہی نہیں ہے۔ دیوتے کہن لگے پر ہن چونکہ اسی آئے ہاں ساڈا سنمان کر، لازمی تو کچھ منگ۔ فقیر کہنے لگا میں تے کچھ منگنا نہیں کیونکہ اندر کوئی منگ نہیں، اس واسطے تھوڑی کوئی خوشی ہوئے میری چولی چ پا دو۔ دیوتے کہنے لگے اسی تینوں یہ ور دینے کہ تو جس کنگال دے سر تے ہتھ رکھیں گا دھنوان ہو جائے گا، جس مریض دے سر تے ہتھ رکھیں گا تندرست ہو جائے گا، جس مور دے سر تے ہتھ رکھیں گا وہ سیاح ہو جائے گا، چتر ہو جائے گا، اور جس درخت نو تو چھو لویں گا ہرا بھرا ہو جائے گا، پھلدار ہو جائے گا۔ اے فقیر کہن لگا اے ور مینوں پروان نہیں۔ دیوتے کہن لگے کیا تو نہیں چاہندا کہ کنگال دھنوان ہو جائے، मूर्ख सियाना हो जाए, बीमार तंदुरुस्त हो जाए। नहीं, मैं ये तो चाहना पर ये मेरे हाथ लाने दे नाल ना होवे, ये मेरी छाया दे नाल होवे। मैं जिथों लंघा मेरी पिछे की जिहड़ी छाया है जिसनों स्पर्श कर जाए वह तंदुरुस्त हो जाए, धनवान हो जाए, सियाना हो जाए और वह दरख्त हरे भरे हो जाण। दरअसल संसार विच बहुती भलाई उन्हां मनुखां दे राही होई है जिन्हां नूं यह भी नहीं पता सी कि असी भलाई कीती है, उन्हां दी छाया नाल हो गए। वह लंघ गए ते उन्होंने लंघन के नाल ही भलाइया हो गई। तो भलाई करन का जो दावा करते रहते हैं दरअसल उन्होंने भलाई विच बहुत वड्डा हंकार होंदा है। वो स्वयमान विच नहीं आते, हंकार विच आते हैं। स्वयमान है हंकार का शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना। तो धर्म की सारी साधना खड़ी है चतुष्ट है अंतःकरण नूं पवित्र करन दी। ते जिस दिन अंतःकरण पवित्र हो जाता है मन विच फुरने शुद्ध हो जाते हैं, बुद्धि सही निर्णय कर दी है, चित प्रभु चिंतन विच रहिंदा है और अहम भाव स्वयमान विच बदल जाता है। इत्थे ही समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।